ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 270। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संवेदन फुरने से जब उसे रूप देखने की इच्छा होती है तब चक्षु इंद्रिय बन जाती है जो रूप को ग्रहण करती है। जब स्पर्श की इच्छा होती है तब त्वचा इंद्रिय बन जाती है जो स्पर्श को ग्रहण करती है। जब गंध की इच्छा होती है तब घ्राण इंद्रिय बनकर गंध ग्रहण करती है। जब शब्द सुनने की इच्छा होती है तब श्रवण इंद्रिया बन जाती है जो शब्द आदिक विषयों को ग्रहण करती है। जब रस की इच्छा होती है तब रसना इंद्रिय प्रकट होकर स्वाद ग्रहण करती है। जब वही संवेदन चेतता है तब अपने साथ वायु को देखता है और उस वायु में प्राण फूरते देखता है। हे रामचंद्र जी, देखना, सुनना, रस लेना, स्पर्श करना, बोलना और गंध लेना आदि जहां जहां इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करती है वह देश है। इंद्रिया जिस विषय को ग्रहण करने लगती है वे पदार्थ है और जिस समय ग्रहण करने लगती है वह काल है। इस प्रकार देश, काल और पदार्थ हुए हैं। फिर क्रम से शुभ अशुभ कर्म भासित होने लगे हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार संवेदन ने फूर कर जगत को रचा है और वह शरीर को रचकर इष्ट अनिष्ट को ग्रहण करता है। जो तुम कहो कि इंद्रिया तो भिन्न भिन्न है और अपने अपने विषयों को ग्रहण करती है, फिर सब इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट इस जीव को कैसे होते हैं? तो इसका उत्तर दृष्टांत द्वारा सुनो। हे रामचंद्र जी, जैसे तुम एक हो और माला के दाने बहुत हैं, पर सबका आश्रय सूत्र है, वैसे ही अहंकार रूपी सूत्र में सब इंद्रिय रूपी दाने हैं। इस कारण अहंकार रूप जीव इंद्रियों के सुख में सुखी और दुख में दुखी होता है। इंद्रिया आप ही से कार्य करने को समर्थ नहीं होती, अहंकार यानी जीव के सत्ता से चेष्टा करती है। जैसे शंख में आपसे बजने की सामर्थ्यता नहीं, पर जब पुरुष बजाता है तो शब्द करता है, वैसे ही इंद्रियों की चेष्टा अहंकार और जीव से होती है। हे रामचंद्र जी, वास्तव में न कोई इंद्रिया है, न इनके विषय है और न मन का फुरना है, सब आभास मात्र है। जब संवेदन फुरता है तब इतनी संज्ञा धारण करता है और जब संवेदन निर्वाण होता है तब सब कल्पनाएं मिट जाती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संपूर्ण कल्पना का क्रम मैंने तुमसे कहा है। जितना कुछ जगत देखते हो सो संवेदन रूप है। शुद्ध चिन्मात्र सत्ता के आदि आभास और चेतनता के लक्षण चित्त अहम अस्मि का नाम संवेदन है। उसके इतने पर्याय हुए हैं, कोई उसे ब्रह्म कहते हैं, कोई उसे ब्रह्मा कहते हैं, कोई विष्णु कहते हैं, कोई प्रजापति कहते हैं और कोई शिव आदि नाम लेते हैं। उस संवेदन ने आगे संकल्प से विश्व रचा जो अकारण है, किसी कारण से नहीं बना। काक ताली अन्याय से अकस्मात आभास उपजा है और साकार दिखता है, परंतु अंतवाहक है। व्यवहार सहित दिखता है परंतु अव्यवहार है। हे रामचंद्र जी, अंतवाहक रूप संवेदन ने आगे जो विश्व रचा है वह भी अंतवाहक रूप है, परंतु अज्ञानी को संकल्प की दृढ़ता से आदिभौतिक रूप दिखता है। जैसे संकल्प नगर और स्वप्नपुर संकल्प से भिन्न नहीं, और संकल्प की दृढ़ता से ही आकार रूप पहाड़, नदियां, घट पट आदि पदार्थ प्रत्यक्ष दिखते हैं, परंतु बने तो कुछ नहीं, शून्य रूप है। वैसे यह जगत शून्य रूप निराकार है। हे रामचंद्र जी, आदि अंतवाहक रूप संवेदन ही बहिर्मुख फुरने से देश काल पदार्थ रूप होकर स्थित हुआ है। जब बहिर्मुख फुरने से देश काल पदार्थ रूप होकर स्थित हुआ है, जब बहिर्मुख फुरना मिट जाता है तब जगत आभास भी मिट जाता है। जैसे स्वप्न का आभास जगत तब तक दिखता है जब प्राणी निद्रा में सोया होता है, पर जब जागता है तब स्वप्न का जगत मिट जाता है और एक अद्वैत रूप अपना आप ही भासित होता है। वैसे ही यह जगत अज्ञान के निवृत्त होने पर लीन हो जाता है। सब जगत निराकार है, पर संकल्प की दृढ़ता से आकार दिखते हैं। हे रामचंद्र जी, संवेदन में जो संकल्प फुरता है वही अंतःकरण चतुष्ट होकर भासित होता है। पदार्थों के चिंतन से इसका नाम चित्त है। संकल्प विकल्प के संसरण से इसका नाम मन है। ज्यों का त्यों निश्चय करने से इसका नाम बुद्धि है, और वासना के समूह मिलने से इसे पुरुष्ट का कहते हैं। पर सब संकल्प मात्र है, और मन से उपजा जगत भी संकल्प रूप है। जैसे इंद्रजाल की बाजी और स्वप्न का नगर संकल्प की दृढ़ता से पिंडाकार भासित होते हैं, परंतु सब आकाश रूप शून्य है, वैसे ही यह जगत आकाश रूप है, आत्मा से कुछ भिन्न नहीं है। जो तुम कहो कि दिखता क्यों है, तो जिसमें दिखता है उसे वही रूप जानो। देश काल नदी पहाड़ पृथ्वी देवता मनुष्य दैत्य ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो स्थावर जंगम रूप जगत दिखता है सो सब ब्रह्म रूप है। वेद शास्त्र जगत कर्म स्वर्ग तीर्थ इत्यादि जो पदार्थ है वे भी सब ब्रह्म रूप है। वही निराकार अद्वैत ब्रह्म सत्ता संवेदन से जगत रूप होकर भासित होती है। जैसे स्वप्न में अपना ही अनुभव सृष्टि रूप भासित होता है, वैसे ही अपना ही अनुभव यह जगत रूप होकर भासित होता है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग होकर भासित होता है, पर जल ही जल है, वैसे ही शुद्ध चिन्मात्र में संवेदन से जो जगत आभास फुरता है वह ब्रह्म ही ब्रह्म है, भिन्न कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, जो कुछ तुमको दिखता है सो सब अपने आप में स्थित अच्युत और अनंत रूप है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब दृष्टा दृश्य रूप को चेतता है तब विश्व होता है। वह विश्व अंतवाहक रूप है। निराकार संकल्प को अंतवाहक कहते हैं। जब दृश्य में अहम भाव से चेतनता रहती है तब अंतवाहक से आदि भौतिक शरीर हो जाता है। आदि में जो ब्रह्मा नाम का संवेदन फुरा है वह अंतवाहक शरीर हुआ है। जब उसने बारंबार अपने शरीर को देखा तब वह भी आदि भौतिक चतुर्मुख हो गया। उसने ओमकार का उच्चारण करके वेद और वेद के क्रम को रचा और संकल्प से विश्व को रचा। जैसे कोई बालक मन में बगीचा रचे और उसमें नाना प्रकार के वृक्ष, फल, फूल, टास और पत्ते रचे, वैसे ही ब्रह्मा ने जगत को रचा और अंतवाहक जीव उपजे। जब जीवों को शरीर में दृढ़ अभ्यास हुआ तब वे अंतवाहक से आधिभौतिक हो गए। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ब्रह्म सत्ता तो निराकार था, उसको शरीर का संयोग कैसे हुआ, उससे आधिभौतिकता कैसे हो गई? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, न कोई शरीर है और न किसी को शरीर का संयोग हुआ है। केवल अद्वैत आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। उसमें जो चैतन्य संवेदन उपजा है, वही संवेदन दृश्य को चेतता रहता है, वही जगत रूप होकर स्थित हुआ है। जब संकल्प की दृढ़ता हुई है तब उसे अपने साथ शरीर और आकार दिखने लगे, परंतु सब आकाश ही है, कुछ बने नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि को उपजी कहिए तो उपजी नहीं और उसका कारण भी कोई नहीं, केवल आकाश रूप है, और कोई पदार्थ उपजा नहीं परंतु स्वरूप के विस्मरण से आकार भासित होते हैं, वैसे यह शरीर और जगत जो दिखता है वह केवल आभास मात्र है। और असंभावना की दृढ़ता से प्रत्यक्ष भासित होता है। जब स्वरूप का विचार करके देखोगे तब शांत हो जाओगे। हे रामचंद्र जी, अविद्या भी कुछ वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न के पदार्थ अविद्यमान होते हैं और विद्यमान दिखते हैं पर जागने पर विद्यमान हो जाते हैं, वैसे यह जगत अविचार सिद्ध है। विचार से शांत हो जाता है। जब विचार करके देखोगे तब सब आत्मा ही भासित होगा। हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता अव्यभिचारी है, अर्थात सत्ता मात्र है, उसका अभाव कभी नहीं होता, वह अच्युत है, अर्थात सदा ज्यों की त्यों है, अपने भाव को कभी नहीं त्यागती, इसलिए जो उससे भिन्न दिखे उसे ब्रह्मात्र जानो। हे रामचंद्र जी, विचार करके जब दृश्य भ्रम शांत होता है तब मोक्ष प्राप्त होता है। आत्मसत्ता ज्ञान रूप निराकार और सदा अपने आप में स्थित है। जब सम्यक ज्ञान का बोध होता है तब जगत का भ्रम नष्ट हो जाता है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, सम्यक ज्ञान और बोध किसको कहते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अनुभव ही बोध कहता है और उसका ज्यों का त्यों जानना सम्यक ज्ञान है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, केवल बोध और केवल ज्ञान किसको कहते हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, दृश्य से रहित चिन्मात्र को तुम केवल बोध जानो, उसमें वाणी की गति नहीं है। इस प्रकार अचेत चिन्मात्र सत्ता को ज्यों का त्यों जानना ही केवल ज्ञान है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, केवल बोध अचेत चिन्मात्र है तो उसमें जगत भ्रम क्यों भासित होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चिन्मात्र जो दृष्टा रूप है उसमें जब संवेदन चेतती है तब वही चेतना चैतन्य रूप दृश्य को भासित होती है। जैसे स्पंदन से रहित वायु अलक्ष्य रूप होती है और जब स्पंदन रूप होती है तब स्पर्श से भासित होती है, वैसे ही संवेदन से जो दृश्य दिखता है वही संवेदन दृश्य होकर भासित होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो दृष्टा दृश्य रूप भासित होता है तो दृश्य बाहर क्यों भासित होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसी का कारण इसे भ्रम कहा है कि यह अपने भीतर है और बाहर भासित होता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने ही भीतर होती है पर वास्तव में न भीतर है और न बाहर, आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है, वैसे ही यह जगत भी ज्यों का त्यों स्थित है, भीतर और बाहर भ्रम से भासित होते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।